लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि सभी पीड़ितों को जीवन का रास्ता मिले तथा वे यीशु के पवित्रतम हृदय के स्पर्श का अनुभव प्राप्त कर सकें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत ईश सेवक फादर कॉन्स्टेंट लेबन्स की जीवनी पर एक लघु चर्चा प्रस्तुत कर रहे हैं। छोटनागपुर के प्रेरित लोगों को मुक्ति दिलाने वाले न्याय के शूरवीर और छोटनागपुर में कार्तिक मिशन के संस्थापक फादर कॉन्स्टेंट लेबन्स का नाम छोटनागपुर के इतिहास में सदा ऊंचा रहेगा। वे यीशु के प्रेम से इतने सराबोर थे कि किसी प्रकार की कठिनाई उन्हें विचलित नहीं कर सकी। छोटनागपुर के लोगों के लिए गरीबी और बेरोजगारी के कारण आज भी बहुत प्रकार की चुनौतियां हैं। हम फादर कॉन्स्टेंट लेबन्स की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अपने लोगों की रक्षा करें। श्रोताओं, पिछले सप्ताह हमने ईश सेवक फादर कॉन्स्टेंट लेबन्स के छोटनागपुर मिशन में नए मोड़ के बारे सुना था। आज हम लोगों के साथ उनके संपर्क एवं सलाहों द्वारा उनकी मदद के बारे सुनेंगे। फादर लेबन्स ने लोगों को कानून और न्याय के रास्ते पर चलना सिखाया। उनके इस मार्गदर्शन ने बहुत सारे लोगों को आकर्षित किया और लोग दूर दूर से सलाह लेने के लिए उनके पास आने लगे। जो लोग भूमिगत संबंधी शिकायत लेकर आते थे, वे उन्हें सलाह देते थे कि वे वैध भूमिगत चुकाएं, उससे ज्यादा नहीं। यदि जमींदार उनसे संतुष्ट न हो तो उन्हें अदालत जाने दें। जिन्होंने कर चुकाया किंतु रसीद नहीं पाया, वे जमींदार से अपनी रसीद की मांग करें। अगर वह रसीद देने से इनकार करता है तो उसे कुछ ना दें, और यदि वह अदालत जाना चाहे तो उसे अदालत जाने दें। बंधुआ मजदूर के लिए शिकायत करने पर वे लोगों को सलाह देते थे कि वैध सीमा से अधिक जमींदारों की सेवा ना करें। यदि जमींदार बहुत अधिक सेवा की मांग करता है तब उसे सेवा देने से इनकार कर दें, और चाहे तो उसे अदालत जाने दें। मारपीट और अन्य अनैतिक व्यवहार की शिकायत करने वालों को वे सलाह देते थे कि यदि वे जमींदारों अथवा उनके सहयोगियों द्वारा दुर्व्यवहार के शिकार होते हों तो जमींदार को अदालत बुलाएं। उन्होंने यह भी सलाह दी कि पुलिस को बिल्कुल पैसा ना दें। अगर वह इसकी मांग करता है तो उसे देने से इनकार करें। यदि वह दुर्व्यवहार करता है तो उसे अदालत बुलाएं। सलाह देने में कोई कीमत नहीं लगती है, किंतु उसे कार्यान्वित करना अलग बात है। फादर लेबन्स ने महसूस किया कि लोगों की स्थिति ऐसी थी कि वे अपने आप में असहाय थे, और यदि उन्हें छोड़ दिया जाए तो वे उनकी सलाह को अमल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वे किस तरह आगे बढ़ना है उससे भी नहीं जान रहे थे। तब फादर लेबन्स ने लोगों को सिखाने का निश्चय किया। लोग न पढ़ सकते थे, न लिख सकते थे और न ही नियमों से परिचित थे। तब फादर लेबन्स ने कानून के बारे उन्हें जानकारी देना शुरू किया। कानून के सामने उनके अधिकार और कर्तव्यों को समझाया। लोग जमींदारों के अन्याय का विरोध करने का साहस नहीं करते थे। फादर लेबन्स ने उन्हें कानून के महत्व और उससे मिलने वाले लाभ की भी व्याख्या की। लोग जमींदारों द्वारा पीटे जाने और उनके द्वारा जुर्म किए जाने के कारण भयभीत रहते थे। फादर लेबन्स ने धीरे धीरे लोगों के भय को दूर किया। लोग अपने जमीन का कर चुकाने में भी असमर्थ थे और अपने लिए वकील भी नहीं खोज पाते थे। इसका सामना करने के लिए फादर ने जरूरत पड़ने पर लोगों को उधार दिया और सही वकीलों के पास भेजा। उन्होंने उन्हें सलाह दी कि वे कानून से एक इंच भी ना हटें, तभी उनकी मदद करने का आश्वासन दिया। फादर लेबन्स को शोषित लोगों की खोज करने के लिए बाहर जाना नहीं पड़ा, लोग स्वयं उनके पास आने लगे। पहले केस में मिली सफलता ने आसपास के दूसरे लोगों का भी ध्यान खींचा और लोग उन्हें अपना संरक्षक मानने लगे। फादर लेबन्स अक्सर कहा करते थे, मैं यहाँ आपके बीच अनंत जीवन की खुशी लाने के लिए आया हूँ, किंतु इस जीवन में भी आपको खुश कर सकता हूँ। अपनी कठिनाइयों को मेरे पास लाएं, कानून द्वारा जितना संभव हो मैं आप सभी की मदद कर सकता हूँ। मुझ पर भरोसा रखें, मैं आपसे अधिक कानून जानता हूँ। इस तरह जनवरी सन 1886 में सुलगी आग धीरे धीरे फैलती गई और छोटा नागपुर के अधिकतर हिस्सों में फैल गई। फादर लेबन्स के छोटा नागपुर आने के एक साल एवं तोरपा में करीब चार महीनों में मार्च के अंत तक करीब 400 से 500 लोग ख्रिस्ती बनने के लिए धर्म शिक्षा ले रहे थे। दो महीने बाद 450 नए दीक्षार्थी थे और 450 लोग दीक्षार्थी बनने का निवेदन कर रहे थे। अगस्त माह तक 1500 लोगों ने ख्रिस्ती बनने के लिए अपना नाम दर्ज कराया था। फादर लेबन्स अधिकांश समय तौर पर मिशन स्टेशन में ही रहते थे, जबकि उनके सहयोगी अलग अलग जगहों में जाते थे। कुछ केसों को लेकर फादर लेबन्स रांची भी जाते थे। इस बीच उन्हें प्रोटेस्टेंट लोगों की विपरीत प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ा। प्रोटेस्टेंट लोग फादर लेबन्स का विरोध कर उनके मिशन को रोकना चाहते थे, क्योंकि लोग कैथोलिक धर्म की ओर अधिक आकर्षित हो रहे थे। फादर लेबन्स इससे विचलित नहीं हुए। मुंडा लोगों के बीच अपनी सफलता ने उन्हें उरांव और खड़िया लोगों की ओर भी बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उनका एकमात्र उद्देश्य था सभी का मन परिवर्तन करना। अनगिनत लोगों के ख्रिस्ती धर्म स्वीकार करने के कारण उन्हें कई चीजों की भी व्यवस्था करनी पड़ रही थी, जिसके कारण उनके पास बिल्कुल समय नहीं था। उन्हें एक साथ सैकड़ों चीजों की चिंता करनी पड़ती थी, गिरजाघर एवं अपने आवास के निर्माण, प्रचारकों, स्कूल, आर्थिक मामलों, दैनिक आवश्यकताओं एवं मिशन स्टेशन में जीवन की व्यवस्था आदि कार्य तत्काल एवं आवश्यक जिम्मेदारियों की मांग कर रहे थे, जिसके लिए उन्हें हरदम समय देना पड़ता था। निर्माण कार्यों में भी उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। इस बीच ख्रिस्तियों की संख्या बढ़ती जा रही थी। लोगों को सूचना देने के लिए बाजारों अथवा चौराहों को उपयुक्त स्थान माना जाता था। धर्म शिक्षा के लिए प्रचारक नियुक्त थे, जिन्हें स्वयं फादर लेबन्स मार्गदर्शन देते थे और उनके लिए एक पुस्तिका भी तैयार की गई थी, जिससे प्रचारकों को धर्म शिक्षा देने में मदद मिल सके। प्रचारक उनके निकट सहयोगी बन गए थे, जो लोगों को कैथोलिक मिशन में ला रहे थे। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत ईश सेवक फादर कॉन्स्टेंट लेबन्स की जीवनी पर एक लघु चर्चा सुन रहे थे। इस पर हम आगे भी चर्चा जारी रखेंगे।
चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटक अंधविश्वास। लेखक हैं विजय पंडित। श्रोताओं, 21वीं सदी का मानव समाज जहां एक ओर स्वयं को अति आधुनिक मानता है, वहीं दूसरी ओर समाज में आदिकाल से तरह तरह के अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियां जड़ जमाए हुए हैं। क्या है अंधविश्वास? ब्लाइंड फेथ, किसी भी बात को बिना सोचे समझे, बिना किसी आधार के, चरम सीमा के परे जाकर करना और मानना अंधविश्वास है। फिर वो ईश्वर की भक्ति हो या किसी इंसान की। कई बार ईश्वर की भक्ति में इस कदर खो जाते हैं कि कोई भी उनसे भगवान के नाम पर कुछ भी करवा ले तो वे झट कर देते हैं। यह ईश्वर में आस्था नहीं बल्कि ईश्वर के नाम पर अंधविश्वास है। अंधविश्वास कई तरह के होते हैं, जिनमें कुछ मान्यताएं होती हैं जो नुकसान नहीं करती। जैसे कौवे की आवाज सुनकर कहते हैं घर में मेहमान आएगा, हथेली में खुजली हो तो कहते हैं पैसा मिलेगा, काली बिल्ली रास्ता काटे तो किसी के पार होने का इंतजार करना, वगैरह वगैरह। और कुछ ऐसी मान्यताएं भी होती हैं जो नुकसान पहुंचाती है। अंधविश्वास से जादू टोने की अवधारणा भी बनी, जिसमें सभी परेशानियों और बीमारियों का कारण जादू टोना माना गया। चमत्कारिक शक्तियों की मान्यता बन जाने के कारण संपत्ति पाने, नौकरी पाने, संतान प्राप्ति के लोभ में दैवीय शक्ति को प्रसन्न करने के चक्कर में पढ़े लिखे लोग भी काफी रुपये खर्च करते हैं। हमारे समाज में पहले ज्यादातर अंधविश्वासियों की जड़ में डर और लोभ है। अंधविश्वास से बचना है तो अपने जीवन को विज्ञान और दर्शन के साथ, सच्चाई के साथ जोड़ना है, तर्क के साथ जोड़ना है। बेतुका भय अपने मन में कभी न पालें, डराने वालों से दूर रहें, साथ ही उन्हें भूलकर भी बढ़ावा न दें। शिक्षा, तर्क, चौकसी और जागरूकता ही इंसान को हिम्मती बनाती है। आशा है आज का नाटक इस दिशा में आपका मार्गदर्शन कर सके। तो आइए सुनते हैं विजय पंडित की लिखी नाटिका अंधविश्वास।
लाजो रानी, आखिरकार मैं चेयरमैन बन ही गया। ये सब मेरे जौनपुर वाले गुरु की कृपा है।
हाँ हाँ, तुम तो चेयरमैन बन गए, पर मेरा क्या है? वो ही टिंकू प्रसाद और वो ही चिंकी।
क्या? मैं तुम्हारा मतलब समझा नहीं। टिंकू प्रसाद और चिंकी तो अपने ही बच्चे हैं ना?
अरे तो मैंने कब कहा कि अपने बच्चे नहीं हैं? तुम तो चेयरमैन बन गए, मेरे लिए कुछ लाए?
मुझे मालूम था कि तू मुझ पर शक करेगी, इसीलिए सोने का हार बनवा के लाया हूँ, जड़ दूं तेरे गले में।
हाय राम, कितना खूबसूरत हार है। मैं तो ऐसी ही नाराज हो रही।
अरे मुझे मालूम है, हर लोगाई की जात एक ही होती है। अच्छा मेरी रानी, जरा हलवा पूरी बना के ला आज।
हाँ हाँ, क्यों नहीं, आज तो हलवा भी बनेगा और पूरी भी बनेगी।
हाय हाय मेरी लाजो रानी।
आज का अखबार पढ़ा आपने? आप चेयरमैन बन गए स्वास्थ्य नगर के।
अरे टिंकू प्रसाद, तू मेरा छोरा है और बासी खबरें पढ़ता है, हैं?
पर पापा, हाँ? अखबार में तो आज आया है।
अरे पर मैं चेयरमैन तो कल बनाऊं।
लग गए बाप बेटे मस्ती करने में, देखना कहीं चेयर ना टूट जाए।
ए रानी, स्वास्थ्य टूट सकता है मगर चेयर नहीं।
पापा वो कैसे? स्वास्थ्य टूट जाएगा और चेयर नहीं टूटेगी, वो कैसे?
अरे टिंकू प्रसाद, अपने जौनपुर वाले बाबा की कृपा से।
देखो जी, ये अंधविश्वास करना छोड़ दो। इस कुर्सी पे बैठे हो ना तो काम भी करना पड़ेगा तुमको।
अरे वो तो बाबा जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगा।
पापा कल मेरा एग्जाम है, मैं पढ़ने जा रहा हूँ।
अरे अब पढ़ के क्या करेगा है? इस चेयर पर तो तुझे ही बैठना है।
बनाओ बनाओ अपने बेटे को अपने जैसा। बेटा जा, तू पढ़ने जा।
बाय मम्मी।
आखिरकार चेयरमैन बन ही गए, पर मेरे लिए क्या लाए पापा?
अरे तुम और तुम्हारी माँ बड़ी मंगौड़ी है, हमेशा मांगती रहती है।
अरे पापा, आपसे नहीं मांगूंगी तो किससे मांगूंगी? लाओ लाओ मुझे 10,000 रुपये दे दो, हेल्थ क्लब में जमा करवाना है।
क्या 10,000? अरे चिंकी, 10,000 रुपये देकर तो मेरी हेल्थ खराब हो जाएगी।
अरे चिंकी देख तो, तेरे पापा तो बड़े दिल वाले निकले। अरे देख मेरे लिए ये सोने का हार लाए हैं।
क्यों पापा, और मेरे लिए कुछ भी नहीं?
बेटा ये सब कुछ तेरा ही तो है।
मेरा थोड़े ही है पापा, वो तो टिंकू का है।
बोल अच्छा तुझे क्या चाहिए, हमें निराश नहीं हो बस।
चलो सब लोग खाना खाने, खाना तैयार है, आ जाओ।
खाना तो खा लेंगे लाजू रानी, पर तुम भी तो दवाई खा लो।
भैया बेस्ट ऑफ लक, अपना पेपर अच्छे से देना।
ओए टिंकू प्रसाद, एक घंटा देरी से जा पेपर देने, बढ़िया परिणाम आवेगा। जौनपुर वाले बाबा ने कहा है।
एक घंटा देरी से जाऊंगा
और क्या,
तो पेपर अच्छा कहाँ से जाएगा पापा?
अरे यही तो चमत्कार है बेटा, मैं भी एक घंटा लेट गया था, देखो कैसा चेयरमैन बन गया, पूरे मोहल्ले में रवाब है मेरा।
जा बेटा जा, इनकी बातों में ना, जा पेपर ठीक से देना।
हाँ भैया, आप पेपर देने जाओ, लेट मत होना।
जा भाई जा, अरे मत सुन अपने बाप की बात, जा जा जा।
हाँ भैया, आज का पेपर कैसे हुआ?
अरे एकदम मस्त हुआ, मैंने सारे के सारे क्वेश्चन पूरे किए।
अच्छा, सारे के सारे क्वेश्चन पूरे किए?
हाँ पापा, सारे के सारे। लगता है इस बार बाबा का समीकरण गलत बैठ गया।
अरे छोड़ो भी तुम लोग इन बाबाओं का चक्कर, अरे कुछ तो काम करो, कितने दिन से घर में बैठे हो, कुछ काम धाम नहीं करते।
अरे लाजो रानी, मुझे लगता है तू सही कह रही है, बहुत दिन हो गए घर बैठे बैठे, चलो मैं चलता हूँ। अरे ये क्या, बिल्ली रास्ता काट गई। खैर छोड़ो इन बातों को, कुछ नहीं होता इन सबसे।
सुनो जी।
क्या जी?
देखो ये बिल्ली ने रास्ता काटा है, 2 मिनट रुक कर जाओ।
लगता है रानी तुझे भी जौनपुर वाले बाबा पर भरोसा है।
मैं किसी बाबा बाबा पर भरोसा नहीं करती हूँ, ये तो काफी पुरानी रीत है। अच्छा।
मम्मी मम्मी।
हाँ।
अरे वो मम्मी।
हाँ बोलना।
बाहर बाहर अपने घर के बाहर एक्सीडेंट हो गया।
क्या?
ट्रक ने 2 लोगों को कुचल दिया।
हाय राम।
और दोनों ऑन द स्पॉट मर गए मम्मी।
हाय राम, देखा 2 मिनट रुक गए तो कैसी विपदा से बच गए।
यार टिंकू प्रसाद।
हाँ पापा।
मैं तो बड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ, समझ ही नहीं आता मैं करूँ क्या।
पापा आप फोन करो ना वो जौनपुर वाले बाबा को, वही रास्ता दिखाएंगे।
तू चुप कर चिंकी, फालतू की राय मत दे इनको।
हाँ रानी, चिंकी ठीक कहती है, अभी फोन लगाता हूँ बाबा को। रिंग जा रही है मगर उठा नहीं रहे बाबा।
लगता है पापा बाबा ने सिम बदल ली है।
अरे भैया सिम बदल लेंगे तो नंबर तो लगेगा ही नहीं, नॉट रीचेबल बताएगा।
चलो छोड़ो अब इन सब बातों को, आज के बाद घर पर कोई भी अंधविश्वास की बात नहीं करेगा, समझे?
ठीक है भाई, हम भी अब सिर्फ कर्म पे भरोसा करेंगे। बाबा का फोन आ रहा है। हेलो हेलो बाबा, आप कैसे हैं बाबा?
अबे बच्चे, जब से चेयरमैन बन गया है बाबा को भूल गया? अभी तुझे 1,25,000 श्रद्धालुओं को भोजन कराना है और मुझे 1,00,000 रुपए नकद देना है, समझा गिरजा शंकर?
पर बाबा आपने मुझे ऐसा कब कहा था, 1,00,000 रुपए नकद और श्रद्धालुओं को भोजन, ये तो बेईमानी है बाबा।
मूर्ख, बाबा का अपमान करता है, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ।
बाबा ने मुझे श्राप दिया है? मैं तो इन बाबाओं के चक्कर में अब नहीं पड़ूंगा, भगवान बचाए ऐसे लोगों से।
अब समझ में आया कि नहीं? अरे भरोसा करो तो सिर्फ मालिक पर।
अंधविश्वास। अभी अभी आपने यह नाटिका सुनी जिसके कलाकार थे भवानी कौल, पूजा केलकर, विजय पंडित और संदीप दुबे। इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।